हमने विचार किया था संक्षेप में, उसको एक बार फिर याद कर ले तो समझ में आ जाता है। सभी ये जो प्रपंच हमारे को दिख रहा है, ये सब अज्ञान से दिखता है। इसकी निवृत्ति कैसे होती है? हमारे जीवन में जो जन्म मरण का सुख दुख का चक्र पड़ा है ना, ये सब अज्ञान के कारण है। इसकी निवृत्ति का उपाय ऋषि लोग, महात्मा लोग, शास्त्रकार अपनी अपनी विधियों से बताते हैं, जैसे कैसे भी इस प्रपंच की निवृत्ति हो जाए, बाद हो जाए। तो ये ग्रंथ जब हमने शुरू किया कल, तो इसमें भी महात्माओं ने इसी रीति को ही आश्रय किया। तो इन्होंने बताया था कि सभी पुरुषों का इच्छा होती है मोक्ष की, सभी की नहीं होती, जिज्ञासुओं की होती है। वैसे चार पुरुषार्थ होते हैं, का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसमें से जो मुख्य पुरुषार्थ है वो मोक्ष है।
सुख की सबको होती है ना,
क्यों? सुख सब चाहते हैं। तो सुख के लिए क्या है? धर्म, अर्थ, काम से जो सुख मिलता है वो क्षणिक सुख है, लेकिन सभी लोग अविनाशी सुख को चाहते हैं, जिसकी कभी भी निवृत्ति ना हो और जिसकी कभी जो जाए ना। ऐसा सुख क्या है? मोक्ष रूपी सुख है। इसलिए कहा था कि पुरुषों की इच्छा का जो विषय है वो पुरुषार्थ है, वो क्या है? मोक्ष है। तो मोक्ष का स्वरूप बतलाया था कि दुख की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इसको ये मोक्ष का स्वरूप है। तो यह जो मोक्ष स्वरूप है, जो मोक्ष है, इसको प्राप्त ये कैसे होता है? तो ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होता, भाव आत्मा का, ब्रह्म का ज्ञान होने से मोक्ष रूपी सुख मिलता है। तो फिर कहा था ब्रह्म ज्ञान दो प्रकार का होता है, प्रोक्ष और अप्रोक्ष। प्रोक्ष का अर्थ होता है जो साक्षात्कार नहीं है, पर्दे के पीछे है, और अप्रोक्ष होता सामने, प्रत्यक्ष। तो वो जो अप्रोक्ष है वो भी दो प्रकार का बताया था, दृढ़ और अदृढ़। और जो साक्षात मोक्ष का हेतु है वह दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान है। और वह जो दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान है वो किससे मिलता है? तो बतलाया था कि वो विचार से मिलता है। विचार किस चीज़ का? जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, ये तीन चीज़ों का विचार करना। तो फिर बतलाया था कि ये जो तीन वस्तु रूप हैं, इनके दो विभाग हो जाते हैं, जड़ और चेतन। इसमें से जीव और जो ब्रह्म है वह चेतन है, और जो जगत है वह मिथ्या है, माया रूप है ना, माया के द्वारा कल्पित है। तो इनका विचार करेंगे तो हम अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। इसी की टीका हम लोग विचार रहे थे। तो विचार यहाँ तक पहुँचा था कि विचार कैसे होता है, विचार तक पहुँचा था कि विचार क्या चीज़ है। तो ये बताया था कि मिले हुए नीर क्षीर को राजहंस जैसे भिन्न भिन्न कर देता, जो हंस होता है उसकी चोंच में ये शक्ति है कि जब वो दूध में चोंच डालता है तो पानी अलग कर देता है और दूध अलग कर देता है। इसी प्रकार जो विवेकी होते हैं ना, जिज्ञासु लोग, जो विवेक जिनको हो जाता है, वह लोग आत्मा और अनात्मा को भिन्न भिन्न जान लेते हैं। आत्मा और अनात्मा का अर्थ है प्रपंच, जड़ रूप जो कार्य है ना, इसको अलग अलग जानना ही विचार है। और फिर विचार कहाँ से मिलता है, विचार का कारण क्या है? तो बतलाया था कि ईश्वर की कृपा, वेद की कृपा, और गुरु की कृपा, और अपनी कृपा, ये जो चार कृपाएं जब होती हैं तब विचार आता है हमारे मन में। तो हमारे ऊपर कृपा है, वेद की भी कृपा है, और ईश्वर की भी कृपा है, गुरु की भी कृपा है, और अपनी कृपा स्वयं हमने करनी है, भाव यत्न करना, पुरुषार्थ करना, अंतःकरण के द्वारा जो हमने सुना है उसको विवेचन करना कि ठीक क्या है इसमें से और गलत क्या है। यहाँ तक विचार किया। आगे कहते हैं कि इस विचार से क्या होता है, जब हम विचार करेंगे ब्रह्म, जीव और जगत का, तो इससे क्या फल मिलता है? इस विचार से दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञान तो हमारे को हो गया कि मैं ब्रह्म हूँ, पर उसको पक्का करना, दृढ़ करना, ये इस विचार से होता है। ब्रह्म ज्ञान तो सुनने से हो गया, गुरु व वेद शास्त्र से सुना हमने, तो उसका चिंतन करते हुए हमारे को हुआ कि मैं ब्रह्म हूँ। तो उसके बाद में इसको पक्का करने के लिए ये विचार करना पड़ता है। उसके बाद कहते हैं ये विचार कब पूर्ण होता है, विचार कब तक करना है, विचार की भी तो अवधि होनी चाहिए ना कि विचार मतलब जीवन पर्यंत करना है, कब तक करना है, इसकी पूर्णता कब होती है। ये कहते हैं कि दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर यह विचार पूर्ण होता है, उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ती। एक बार अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर स्वतः ही चलता रहेगा विचार, करना नहीं पड़ता। पहले तो करना पड़ता है, उसके बाद स्वतः ही चलता ही रहता है, स्वभाव में आ जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी स्थिति हो जाती है, फिर जाती नहीं कभी, उसमें स्थित हो जाता है। फिर कहते हैं कि विचार किसका करना, उसका विषय क्या है विचार का, ये है कि मैं कौन हूँ, ब्रह्म कौन है और प्रपंच क्या है। प्रपंच समझते हैं ना, प्रपंच का अर्थ है ये संसार जो दिख रहा है, दिखाई पड़ रहा है, इसको प्रपंच कहते हैं। ये तीन वस्तुओं का विचार करना है, ये ही विचार के विषय हैं। और इन तीन वस्तुओं का विचार करना कि मैं कौन हूँ, ब्रह्म क्या है, प्रपंच क्या है, ये तीन ही वस्तु है, इसका विचार कर लेंगे तो फिर हमारे को धीरे धीरे करते करते हम अपनी स्वरूप जो अवस्थान है उसमें पहुँच जाएंगे। अब कहते हैं कि इन तीन वस्तुओं का साधारण रूप क्या है, हमारे को पता तो हो तभी तो विचार करेंगे ना, इसका सामान्य रूप क्या है तीनों का। तो कहते हैं कि मैं और ब्रह्म यह चैतन्य है दोनों, मैं मतलब जीव जिसको समझता है, जीव और ब्रह्म दोनों चेतन है, मैं भी चेतन हूँ, ब्रह्म भी चेतन है, और जो प्रपंच है वह जड़ है। जड़ का भी कल बताया था, जड़ का अर्थ होता है कि जो अपने आप को भी नहीं जानता, दूसरे को भी नहीं जानता, जैसे ये सब चीज़ें पड़ी हैं ना, ये अपने आप को भी नहीं जानती, दूसरे को भी नहीं जानती, इसलिए ये जड़ है। हम लोग अपने आप को भी जानते हैं, दूसरे को भी जानते हैं, चेतन है। इसी प्रकार ब्रह्म भी चेतन है और जीव भी चेतन है, प्रपंच जड़ है। फिर कहते हैं चेतन सो क्या है, उसको खोल के बताते हैं कि चेतन किसको कहते हैं। जो ज्ञान स्वरूप है, सर्व घटपटादि प्रपंच को जानता है, घटपट से समझते हैं, घट मलो घड़ा, पट मलो कपड़ा, इत्यादि जितनी वस्तुएं हैं ना, चेतन उसको कहते हैं जो ज्ञान स्वरूप है, घटपटादि जितनी वस्तुएं हैं संसार की सबको जानता है, और जिसको अन्य मन इंद्रियां आदि कोई नहीं जान सकते। मन है, हमारे इंद्रिय हैं, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, प्राण इत्यादि जो है ना, वो उसको नहीं जान सकते, लेकिन वो इनको जानता है, उसको कहते हैं चेतन। जैसे एक दृष्टांत देते हैं, जैसे स्वच्छ शीशे के माध्यम से निज मुख का साक्षात्कार होता है, जो शीशा होता है, दर्पण होता है ना, जब स्वच्छ होता है ना, वो स्वच्छ मतलब साफ, साफ होता है तो उसमें हमारा मुख दिखता है, वैसे ही शुद्ध बुद्धि के माध्यम से चेतन ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। जो ब्रह्म है उसका साक्षात्कार कैसे होता है, उसका दर्शन कैसे होता है, शुद्ध बुद्धि से होता है। जब तक हमारी बुद्धि का अर्थ वही जो बार बार जहाँ बतलाते थे ना, आत्मांतःकरण, मन भी उसको कहते हैं, बुद्धि भी उसको कहते हैं, चित्त भी उसको कहते हैं, अहंकार भी उसको कहते हैं, चार उसके भेद हैं। तो जब शुद्ध बुद्धि हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है तभी साक्षात्कार होता है। जैसे शुद्ध शीशे में हमारा मुख दिखता है ना, शीशा जब गंदा होगा तो मुख नहीं दिखता उसमें, इसी प्रकार जब तक हमारा अंतःकरण मलिन है ना, उसमें विक्षेप है, मल है, आवरण है, तब तक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता। बुद्धि उस चेतन को जान नहीं सकती, क्योंकि बुद्धि स्वयं तो जड़ है। जब कह दिया कि बुद्धि से दर्शन होता है उसका, तो बुद्धि तो जड़ है, उसको नहीं ना जान सकती। चेतन की सत्ता प्राप्त कर इतर पदार्थों को जानती है, बुद्धि सभी पदार्थों को जानती है उसकी सत्ता से, लेकिन उसको नहीं जान सकती, जिसकी सत्ता से जानती है ना। मति ना लखे जय मति लखे, सो मैं शब्द स्वरूप विचार सागर में आया, कि मति जिसके द्वारा जानती है, पर मति उसको नहीं जानती, वो मैं हूँ। मति मतलब बुद्धि, बुद्धि जिसके द्वारा जानती है, जिसको नहीं जानती वो मैं हूँ। अब मेरे द्वारा बुद्धि सबको प्रकाशित कर रही है, मेरे को नहीं जान सकती, वो जड़ है। तो उसके आगे कहते हैं ये इन्होंने चेतन का स्वरूप बतलाया कि जो ज्ञान स्वरूप है, अपने आप को भी जानता है, दूसरे को भी जानता है, उसको कहते हैं चेतन। समझ गए। उसके बाद कहते जड़ क्या है, अपने आप को भी ना जाने और दूसरों को भी ना जाने, ऐसा अज्ञान एवं उसके कार्य पंचभूत और भौतिक पदार्थ ये सभी जड़ हैं। एक तो अज्ञान है मूल कारण सबका, अज्ञान और अज्ञान के कार्य कौन है, पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये पंचभूत उसके कार्य हैं अज्ञान के, और इनके द्वारा जो आगे बने हुए हैं ना, जो शरीर है खंड है ब्रह्मांड है जितने पंचभूतों से बने हुए ना, ये सारे जो है जड़ हैं, ये अपने आप को भी नहीं जानते दूसरे को भी नहीं जानते। तो दो भाग हो गए ना, एक चेतन एक जड़, जो जीव है और ब्रह्म है जो चेतन है, और जो जगत है वह जड़ है, बस इन तीन चीज़ों को अलग अलग जानना यही विचार है। इसी के विचार करने से हम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं, बस इन तीन चीज़ों का विचार करना समझना तो इतना ही है कि प्रपंच जड़ है और ब्रह्म चेतन है, तो हम भी चेतन हैं। जब हम चेतन हैं तो हमारा जड़ के साथ कोई संबंध नहीं है, ये जड़ हमारे से प्रकाशित हो रहा है, यदि हम इसको नहीं मतलब सत्ता देंगे तो ये कुछ नहीं कर सकता प्रपंच, इतना ही जानना है। फिर कहते हैं कि उपरोक्त तीन वस्तुओं के विचार का किस रीति से उपयोग, कैसे उसका विचार करेंगे, ये तो हमारे को पता चल गया कि ये तीन चीज़ों का विचार करना है। कहते हैं कि तत्त्वमसि महावाक्य में स्थित त्वम और तत्पदों के वाच्यार्थ जीव और ईश्वर की उपाधि अविद्या और माया रूप प्रपंच को विचार द्वारा जेवरी में सर्प की भांति, ठोंठ में पुरुष की भांति और मरुभूमि में मृग जल की भांति मिथ्या जानकर त्याग करना प्रपंच के विचार का उपयोग है। ये थोड़ा कठिन पड़ता है।
सब्जी ना बनाएगा, सब्जी देती थी ना उतना, हाँ दाल बनाएगा सब्जी कहते लैके उनके,
ये इसका जब यहाँ थोड़ा सा कठिन पड़ता है। वेद के जो महावाक्य है ना तत्त्वमसि, एक वेद का महावाक्य है तत्त्वमसि, उसमें तीन पद रहते हैं तत् त्वम और असी, तो उसमें तत् अलग है तत् और त्वम अलग है असी अलग है, तीन पद हैं। ये गुरु लोग जब इन महावाक्य का उपदेश करते इतने ही बोलते हैं तत्त्वमसि तू ब्रह्म है, उसका अर्थ है तू ब्रह्म है, परंतु वो जो तत् त्वम और असी है ना उसमें तत् और त्वम दो पद हैं, तो उनका दो प्रकार का अर्थ होता है, तत् के भी दो अर्थ त्वम के भी दो अर्थ, समझ में ना, तत् और त्वम दो पद हैं तो उसके दो दो अर्थ होते हैं, तत् के भी दो अर्थ होते हैं त्वम के भी दो अर्थ होते हैं, कौन कौन से, एक एक वाच्य अर्थ होता है एक लक्ष्यार्थ होता है। वाच्य अर्थ होता है जो सीधा किसी शब्द को हमने बोला उससे जो अर्थ होता है, घट हमने बोला तो सामने जो पड़ा है तो ये हमारे को पता कि इसको घट कहते हैं, या जो लक्ष्य अर्थ होता है ना वो घुमा करके होता, सीधा नहीं होता। जैसे कोई पूछता ना हमारे को कि आपका घर कहाँ है, हम कहते स्टेशन पे, स्टेशन में ही है, उसका अर्थ क्या है, स्टेशन में मतलब नहीं कि स्टेशन से थोड़ी सी दूर है, तो हम ऐसे ही कह देते ना, कहेंगे आपने कहाँ जाना, यहीं जाना है, जैसे हम वहाँ जाते हैं बनारस में कहेंगे कहाँ, कहें हमने चौक में जाना है, चौक में तो हमारा आश्रम नहीं है, लेकिन जब हमारे को कोई पूछता है तो कहते कहाँ है आश्रम, हम कहते चौक में, तो उसका मतलब होता है कि चौक के बिल्कुल पास में, जो लक्ष्य अर्थ होता है लक्षणा से, जो मतलब पास में ही होता है, जैसे किसी ने कहा कि गंगा गंगा में घर है, तो गंगा में घर तो हो नहीं सकता, उसका मतलब गंगा के किनारे पर है, तो इसको कहते हैं लक्षार्थ। ऐसे ही जो तत्पद है ना उसका वाच्य अर्थ है, उसका वाच्य अर्थ होता है ईश्वर, और जो त्वम है उसका वाच्य अर्थ होता है जीव। तत् और त्वम है ना दो, तत् का अर्थ है ईश्वर, त्वम का अर्थ है जीव, पर ये उसके वाच्य अर्थ हैं, यदि इन दोनों को मिलाएंगे तो एकता नहीं हो सकती, इन दोनों को एक करना है ना हमने, जीव और ईश्वर का ये अर्थ लेंगे तो एकता नहीं हो सकती, क्योंकि जीव के साथ में विशेषण लगे हुए हैं कि जीव अल्पज्ञ है, बहुत नहीं जानता थोड़ा जानता है, और ईश्वर कैसा है सर्वज्ञ है सबको जानता है, तो जो अल्पज्ञ है सर्वज्ञ है दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते ना, कैसे इकट्ठे होंगे, एक छोटा है एक बड़ा है, जो थोड़ा जानता है जो ज़्यादा जानता है उनकी एकता नहीं हो सकती, इसलिए इसके लक्ष्यार्थ को जानना पड़ता है। तो लक्ष्यार्थ का मतलब होता है कि ये इसका अल्पज्ञ जो धर्म है उसको छोड़ दो, उसकी जो सर्वज्ञता है उसको छोड़ दो, सर्वशक्तिमान है ये, थोड़ी शक्ति वाला है, तो ये इनके जो विशेषण है इसको छोड़ करके जो चेतन चेतन है दोनों का वो एक है, इसलिए जीव ईश्वर एक है ना, धर्मों को लेकर के एक नहीं हो सकते। जब उनका उनके अंदर जो चेतनता है ना वो दोनों की एक है, ये इसका विचार ऐसे करना है। ये विचार जो करना हमने जीव ईश्वर का ब्रह्म का इसी प्रकार करना है कि ये जो विशेषण बीच में धर्म दिख रहे हैं ना, धर्म तो उपाधि को लेकर के होते हैं, वैसे धर्म नहीं होते। तो ये विचार जब इस प्रकार करेंगे ना तब ये हमारा विचार का उपयोग होगा। ये दृष्टांत भी दिया कि इसका विचार करते हुए ऐसे जानना जैसे जेवरी में सर्प, जेवरी मतलब रस्सी, रस्सी में जो सर्प है, जहाँ रात को हमने कल बताया था जब जा रहे होते रास्ते में कोई वृक्ष खड़ा ना टूटा हुआ, तो ऐसे लगता है कि उसमें कोई आदमी होगा या कोई वृक्ष है या आदमी है, उसमें दो दो प्रकार का संशय हो जाता है। तो उसको यथार्थ रूप से जानना, एक बार तो दोनों उसमें आते ना, इसमें झूठ में पुरुष है या ये कोई मतलब वृक्ष खड़ा है, तो जब पास में जाएंगे वैसे उनकी एकता नहीं हो रही, एकता हो रही है जब बाहर से देखते हैं कि ये कौन है, तो जब जानेंगे तब अलग अलग जानेंगे ये पुरुष है या ये वृक्ष खड़ा है। इसी प्रकार रस्सी में सर्प जब दिखता ना रात्रि को पड़ी होती है, तो जब उसको देखते अच्छी तरह पहले तो लगता है कि रस्सी है कि सर्प है, दो प्रकार का हो रहा है ज्ञान, तो जब जानेंगे तो एक को हटा देंगे तो एक ही हो जाएगा, रस्सी और सर्प दोनों अलग अलग नहीं रहे, एक हो गए। इस प्रकार जब विचार करेंगे तब हमारा विचार का उपयोग होगा। ये कहते हैं मैं त्वम पद का लक्ष्यार्थ आत्मा, जो त्वम पद है ना त्वम, उसका जो लक्ष्यार्थ क्या है आत्मा, उसका वाच्य अर्थ है जीव, लक्ष्य अर्थ है आत्मा, और जो तत्पद है उसका वाच्य अर्थ है ईश्वर, और उसका लक्ष्य अर्थ है ब्रह्म। आत्मा और ब्रह्म एक हो सकते हैं, जीव और ईश्वर दोनों जो उनका वाच्य अर्थ लेंगे तो अलग अलग धर्म वाले हैं, एक नहीं हो सकते। इस प्रकार जब हम करेंगे ना एकता ब्रह्म, और इस प्रकार जब विचार करेंगे ब्रह्म व आत्मा की एकता का विचार करके सत्य जानकर अवशेष रखना क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ब्रह्म कौन है, इस विचार का उपयोग हो जाएगा। ये फल है इसका, जब उनके वाच्य अर्थ लक्ष्य अर्थ दोनों को बाँचेंगे ना, अलग अलग विचार करेंगे, तब अंत में फिर हो जाता है कि जो ब्रह्म है वह मैं हूँ। विचार का अधिकारी कौन है, विचार कर कौन सकता है, सभी लोग तो ऐसा विचार नहीं कर पाएंगे ना, ये शब्द ही किसी के समझ में नहीं आएंगे, विचार तो कौन करेगा। तो कहते इस विचार का अधिकारी कौन है, इस विचार का अधिकारी है उत्तम जिज्ञासु। साधारण आदमी नहीं विचार कर सकता, उसको आप ये वेदांत सुनाएंगे वो कहेगा ये तो बोर हो जाएगा वो, कि ये क्या कह रहे हैं। जैसे बताते थे हमारे को गुरु जी जब पढ़ते थे कि वो कहते हम लोग जब कैलाश आश्रम में पढ़ते थे तो वहाँ भी गुरु लोग ऐसे बताते थे कि ये सब प्रपंच जो है झूठा कभी हुआ ही नहीं, ऐसे ब्रह्म में स्थित हो जाओ। तो एक कहते हमारा विद्यार्थी साथी कहता कि गुरु जी जिस ब्रह्म में चाय नहीं है, अखबार नहीं है, टीवी नहीं है, ऐसे ब्रह्म में हमारे को नहीं जाना, छोड़ो ऐसे ब्रह्म को, वो ब्रह्म आप अपने पास रखो। जिस ब्रह्म में चाय नहीं मिलती, टीवी नहीं मिलता, अखबार नहीं पढ़ने को मिलती, ऐसा ब्रह्म हमारे को नहीं चाहिए। तो आम आदमी नहीं समझ पाएगा ना, जिज्ञासु समझ पाएगा। तो जिज्ञासु ये कहते हैं कि वह अधिकारी सतगुरु की कृपा से उपोधकात आदि प्रक्रिया, वह जो जिज्ञासु है वह जब इस संसार के दुख से संतप्त होता है ना, दुखी होता है, उसके अंदर फिर जिज्ञासा होती है कि इस संसार जब क्लेश है ना जितने, इसमें से मैं कैसे छूटूं। जैसे कहते हैं किसी के सिर में आग लग जाए ना, आग किसी के सिर में आग लग जाए तो क्या क्या देखता है वो देखता है कि मेरे को कहीं पानी का गड्ढा मिले तो उसमें जा करके मैं सिर को डुबो दूँ, मेरी अग्नि शांत हो जाए। इसी प्रकार जब संतप्त होता ना संसार के क्लेशों से कि कैसे मेरे को गुरु मिले तो कैसे मेरी शांति हो, जैसे वो अग्नि वाला आदमी दौड़ता है पानी की तरफ, इस प्रकार जब जिज्ञासा होती ना कि कैसे कैसे मैं इसे छूटूँ, तब वो ऐसे गुरुओं की मतलब खोज करता है। तो गुरुओं के पास जब जाता है तो उपोधकात, उपोधकात बताते ना आपको कि मतलब एक प्रक्रिया होती है समझ आने की, और गुरु लोगों को जुगती बताते हैं कि ऐसे 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 प्रक्रिया से जब जानता है तो उसके बाद फिर उसको क्या होता, मैं ब्रह्म हूँ। इस रीति से आत्मा ही ब्रह्म है ऐसा अप्रोक्ष ज्ञान जानना चाहिए गुरुओं के पास जा करके। प्रक्रिया क्या है, उन्होंने कहा ना प्रक्रिया वाली युक्ति, क्या क्या युक्ति है, कहते हैं पहला तो उपोधकात। उपोधकात का अर्थ होता है कि जैसे किसी के घर से हमने छाछ लेनी है ना लस्सी, तो जाएंगे तो सीधा नहीं मांगेंगे, पहले पूछेंगे कि आपकी भैंस मिलती है, गायें मिलती है कि नहीं, दूध देती है कि नहीं। वो कहेंगे हाँ देती है, तब कहेंगे आपने उसको आप मथते हैं कि नहीं, मक्खन निकालते हैं कि नहीं, लस्सी निकालते हैं कि नहीं, ऐसे पूछेंगे। लेनी तो हमने लस्सी है उसके, छाछ ही लेनी है, लेकिन पूछ कैसे रहे हैं, युक्ति से सीधा नहीं,
पता नहीं ना मेरे घर है,
क्योंकि मालूम तो है नहीं हमारे को, इसलिए युक्ति से पूछते हैं कि पता चल जाएगा, यदि होगी तो बता देंगे, नहीं तो फिर बोलेंगे नहीं कि हमारे को छाछ चाहिए। जब वो कहेंगे कि हाँ हमारे घर में है तब मांगेंगे। इसी प्रकार गुरु लोग जब इसका प्रपंच को बताने लगते हैं ना, तो सीधा जब बताएंगे ना कि कुछ नहीं है तुम्हारे बगैर, तो कोई समझेगा नहीं, कोई कहेगा ये कहाँ से आ गया जब कोई नहीं है। पहले वो इसको खड़ा करके दब ये कहते हैं ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया। जब ये पता चल जाता ना कि ये कैसे आया, तब कहते हैं ये है नहीं, बताना तो यही होता है कि है नहीं है। तो है जब सामने दिखाएंगे तभी तो, जैसे घड़ा सामने आएगा ना तो तभी कहेंगे ना इसको फोड़ दो, इसको नष्ट कर दो, या ये है ही नहीं है। इसलिए प्रपंच को पहले दिखाते हैं कि ये जो दिख रहा है ये कहाँ से आया, जब उसकी प्रक्रिया का पता चल जाता है तो अंत में कहते हैं ये है ही नहीं है, ये उपदकार
स्वरूप ला देते ना, इसका क्या स्वरूप है
प्रक्रिया। और दूसरा है कि प्रपंच का आरोप और अपवाद। आरोप कहते हैं कि किसी वस्तु में किसी अवस्तु का, जैसे रस्सी है ना, रस्सी, रस्सी में सर्प को कहना कि इसमें सर्प है, ये सर्प है कि रस्सी है, दो चीज़ें मतलब पड़ी तो एक ही चीज़ है, लेकिन उसमें सर्प को कहना, ये है आरोप, कल्पना करनी किसी चीज़ की और फिर उसी कल्पना को हटाना, ये अपवाद है, बाद कर देना। और उसके बाद तीन देह होती हैं, तीन शरीर होते हैं, एक सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर और तीसरा कारण शरीर। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीन शरीर बताएंगे, तब अंत में कहेंगे ये तीनों ही, मैं इन तीनों से अलग हूँ। उसके बाद पंच कोश होते हैं, पंच कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये तीन कोश बताते हैं, इनका स्वरूप बतला करके फिर कहते हैं कि मैं इनसे अलग हूँ। इस प्रकार की प्रक्रियाएं जो है 16, इसमें इन्होंने 16 दी है, 16 कला है ना इसकी, तो एक कला में एक प्रक्रिया दी है। जैसे हमने प्रथम कला आज हमारी पूरी हो गई ना, तो उसमें एक प्रक्रिया दी थी उपोधका, जो अभी अभी बताया कि किसी चीज़ को कहना तो अन्य शब्दों को कह करके उसको कहना, ये एक कला में, ये इस प्रकार की 16 कलाएँ हैं ना इसकी, तो 16 प्रक्रियाएँ बताई अलग अलग, तो अंत में जा करके फिर निर्णय हो जाता है कि मैं कौन हूँ, संसार क्या है। यह पहली कला जो है ना यहाँ तक समाप्त हुई है, अब दूसरी कला आरंभ करते हैं। दूसरी में बता रहे हैं प्रपंचारोपापवाद। प्रपंच तो समझा, पहले समझ गए हम लोग, ये जो संसार इसको प्रपंच कहते हैं, इसका आरोप और अपवाद। आरोप का अर्थ है मंडन, इसी को कहना ये ऐसा 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 ऐसा, इसको दिखाना, इसका स्वरूप हमारे सामने लाना। और अपवाद कहते हैं इसका वाद करना, खंडन करना, ये नहीं है, इस कला में कहेंगे। इसका मूल कहते हैं प्रपंचारोपापवाद कर निष्प्रपंच वस्तु, ब्रह्म जान के अवस्तु मायादिक भानिए। ये कहते हैं कि जो निष्प्रपंच वस्तु है, निष्प्रपंच, प्रपंच से रहित, निष्प्रपंच का अर्थ होता है प्रपंच से रहित, जो प्रपंच से रहित वस्तु है कौन, ब्रह्म। ब्रह्म जो है उसमें संसार है नहीं, तीनों कालों में उसमें कुछ नहीं है, वो तो एक है, अद्वितीय है, एक है। परंतु ऐसा जो निष्प्रपंच वस्तु जो ब्रह्म है, उसमें प्रपंच का आरोप और अपवाद करके, पहले उसमें प्रपंच को दिखाना फिर हटाना, इसके इस युक्ति से उस ब्रह्म को जान के जो अवस्तु है वस्तु है जो यथार्थ है, अवस्तु मतलब जो है नहीं, कौन माया आदि, माया और उसका कार्य पंचभूत है, खंड ब्रह्मांड है, जितने भौतिक पदार्थ हैं सबका खंडन करना, इसके द्वारा आरोप से अपवाद से ब्रह्म वस्तु को जानना, ये बता रहे हैं। ब्रह्म माया संबंध रू जीव ईश भेद तीन। अब ये बता रहे हैं कि संसार में छह चीजें हैं, छह, एक है ब्रह्म और दूसरा है माया और तीसरा क्या है, ब्रह्म और माया का संबंध, संबंध मतलब जब पता नहीं ना चलता एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, ब्रह्म और माया जब मिलते हैं तो संसार का ये भान होता है। ब्रह्म और माया और ब्रह्म माया का संबंध ये तीन हुए, जीव और ईश्वर पांच हो गए, जीव और ईश्वर का भेद ये छह चीज़ें हैं ना, जो इनको अनादि माना जाता है। अनादि का अर्थ होता है कि जिसका कभी आदि नहीं होता, पता नहीं ये कब से बनी है, ब्रह्म का भी मालूम नहीं है, माया का भी मालूम नहीं कब से बनी है, और जो इनका संबंध है आपस में उनका भी मालूम नहीं कब से बनी है, और जीव का जीवपना कब से शुरू हुआ है कोई मालूम नहीं, ईश्वर का ईश्वरपना कब से आया है कोई मालूम नहीं, इनका दोनों का भेद है, जय जीव है ये ईश्वर है ये भी पता नहीं कब का है। भाव जे अनादि हैं छह चीज़ें, इनका आदि नहीं पता कब से ये चला आता है, ये छह चीज़ें अनादि हैं। और वस्तु में अवस्थ यही है, छठ जे अनादि ये छह अनादि हैं, तामे ब्रह्म अंत मानिए, ब्रह्म अनंत मानिए, ये छह चीज़ें जो अनादि तो हैं पर इसमें से जो ब्रह्म है ना वो अनंत है, बाकी जो पांच चीज़ें हैं वो अनादि तो हैं पर अनंत नहीं है, शांत है भाव, उनका अंत हो जाता है, जो पांच चीज़ें हैं ना उनका अंत हो जाता है, अनादि तो हैं उनके आदि का नहीं मालूम लेकिन अंत हो जाता है उनका, ब्रह्म का आदि भी नहीं है अंत भी नहीं है, समझ गए ना, छह चीज़ें हैं उसमें से पांच का आदि तो नहीं पता लेकिन अंत हो जाता है ज्ञान होने पर, ना माया रहती है ना माया का संबंध रहता है, ना जीवपणा ना ईश्वरपणा ना इनका भेद, पांचों चीज़ें अंत हो जाती है ज्ञान होने के बाद, पर जो ब्रह्म ऐसा है उसका आदि भी नहीं है अंत भी नहीं है, इसलिए ये पांच जो है ना इसमें से अनादि तो हैं पर अंत वाली हैं, ब्रह्म ऐसा है अनादि भी है अनंत भी है, इसलिए उसको कहते हैं ना आद सच जो आद सच है पी सच हो सी पी सच, पहले भी था अभी भी है आगे भी रहेगा, भाव उसका आदि आदि का भी नहीं मालूम अंत भी नहीं होता। तो छह चीज़ों में से एक ब्रह्म ऐसा है वो अनादि भी है अनंत भी है, बाकी पांच अनादि वाली तो हैं लेकिन अंत वाली अंत हो जाता है। अब कहते हैं कि वस्तु में अवस्तु कर कथन आरोप, वस्तु भाव जो ब्रह्म है ना ब्रह्म, ब्रह्म में अवस्तु जो माया आदि के ना प्रपंच उसका कथन करना इसको आरोप कहते हैं, आरोप मतलब कल्पना करनी, ब्रह्म में संसार की संसार को कहना ये आरोप है। तो इस फिर अवस्तु का बाद करके जो अवस्तु माया आदि है ना इसका बाद करके वस्तु को जानना ये है अपवाद, रो आरोप और अपवाद दो चीज़ें हैं ना, आरोप और अपवाद। आरोप का अर्थ होता है कि ब्रह्म में संसार की कल्पना करनी और अपवाद का अर्थ है कि उस संसार का बाद कर देना, निश्चय करना भी ये संसार नहीं है, इसको अपवाद कहते हैं। फिर कहते हैं कि ये होता कैसे है, ये हम कैसे जानेंगे, गुरु के प्रसाद जब गुरु सतगुरु मिलते हैं उनकी प्रसाद कहते हैं कृपा से, उनकी कृपा से युक्ति जान करके वो युक्ति बताते हैं ना ऐसे 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 इसका चिंतन करो, तो गुरुओं की जब कृपा होती है उनसे युक्ति मिलती है, तो पीताम्बर जी जिन्होंने ये लिखा उनका नाम पंडित पीताम्बर जी महाराज कहते हैं कि गुरु की कृपा से युक्ति जान करके ताज तम कार्य हे विवेकी हे जिज्ञासु, ये जो तम है तम कहते अंधकार अज्ञान, उस तम को उसके कार्य को अज्ञान को भी अज्ञान के कार्य संसार को ताज छोड़ करके निज जानिए, निज मतलब अपने आप स्वरूप को जान लो,
आरज निज जान,
आरज का अर्थ है विवेकी, आर्य कहते, आर्य कहते ना आर्य, हे आर्य, हे श्रेष्ठ, हे विवेकी, ये संबोधन किया। आर्य बोलते हैं ना, आर्य मतलब जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनको आर्य कहते हैं। तो हे श्रेष्ठ, हे विवेकी, ये जो गुरु की कृपा से युक्ति लेकर के, युक्ति के द्वारा चिंतन मनन करके जो तम है अंधकार उसका, उसका जो कार्य है संसार, इसका बाध करके अपने आप को जानो, ये इसका मूल है, मूल। और आगे इसी का टीका भी कहते हैं, जगत का आरोप अपवाद। आरोप अपवाद पहले बताया, आरोप का अर्थ है मंडन, मंडन, और अपवाद का अर्थ है खंडन, किसी चीज को हटाना। ये करके प्रपंच रहित वस्तु रूप अधिष्ठान ब्रह्म को जानकर अवस्तु रूप अध्यस्त माया एवं उसके कार्य जगत का बाद निश्चय करो। अधिष्ठान कहते हैं आधार को, जैसे हम इसमें बैठे हैं ना, ये जो नीचे बिछा हमारे बिछाया हुआ हमने, इसको कहते हैं अधिष्ठान, आधार। हम इसके ऊपर बैठे हैं, हम हैं इसमें अध्यस्त, हम इसके आश्रित हैं। तो जो अधिष्ठान है प्रपंच का, कौन है? ब्रह्म। और प्रपंच क्या है? अध्यस्त है, उसमें कल्पित है। तो अधिष्ठान को जानो, जो अध्यस्तपना उसका बाद निश्चय करो कि ये जो अध्यस्त है ना संसार माया प्रपंच, ये नहीं है, केवल अधिष्ठान ही है, आश्रय है ब्रह्म। वो कैसा शुद्ध ब्रह्म माया, वो जो पहले बताए छे, एक तो शुद्ध ब्रह्म और दूसरा माया और तीसरा ब्रह्म और माया का संबंध, तीन ये वस्तु हुई, और चौथी क्या है? जीव। पांचवा है ईश्वर, और छठा क्या है? जीव और ईश्वर का भेद। ये छह अनादि हैं, छह वस्तुएं अनादि हैं। इन छह में ब्रह्म को अनंत मानो, ब्रह्म जो है वह अनंत है, उसका कभी अंत नहीं होता। अधिष्ठान में अध्यस्त का कथन करना आरोप है। अधिष्ठान में जैसे रस्सी में सर्प का आरोप करना, कहना उसको ये आरोप है कि रस्सी में सर्प है, ऐसा कहना ये आरोप है। और अध्यस्त का बाद कर, अधिष्ठान का कथन अपवाद, सर्प का बाद करके रस्सी का कहना ये रस्सी है सर्प नहीं है, इसको कहते अपवाद भाव, खंडन कर देना, हटा देना। पीताम्बर जी कहते हैं, सतगुरु की कृपा से यह युक्ति जानकर हे आर्य, हे विवेकी, अज्ञान उसके कार्य जगत को त्याग कर स्वस्वरूप को जानो। ये इसका मूल का टीका हुआ। अब आगे इसकी प्रश्न उत्तर से इसको खोल के बताते हैं कि शुद्ध ब्रह्म में प्रपंच का आरोप कैसे हुआ। ये शुद्ध था ना ब्रह्म, तो इसमें से प्रपंच कहाँ से आ गया? ये प्रश्न किया ना, पूछेगा ना जो जिज्ञासु, उसने पूछा गुरुजी से कि महाराज जी आपने जब बता दिया तो ब्रह्म शुद्ध है, तो शुद्ध ब्रह्म में ये प्रपंच कहाँ से आया? जब वो शुद्ध है तो शुद्ध में ये कहाँ से आ गया, ये बताइए हमारे को। तो उसको कहते हैं अनादि शुद्ध ब्रह्म में अनादि कल्पित प्रकृति है। जो अनादि शुद्ध ब्रह्म है उसमें जो प्रकृति भाव, ये प्रपंच है ना, जो प्रकृति, वो अनादि है, आज से नहीं है, जब से ब्रह्म है तभी से है। तो ब्रह्म के साथ अनादि कल्पित तादात्म्य संबंध है, और इस प्रकृति का, माया का जो संबंध है ना ब्रह्म के साथ, कौन सा? अभेद संबंध, एक जैसे लगते हैं ना, पता नहीं चलता, ये संबंध भी अनादि से चलता आ रहा है। और अर्थात कल्पित भेद सहित वास्तव में अभेद रूप संबंध है। जो भेद है वो तो कल्पित है, कल्पित भेद सहित वास्तव में अभेद रूप संबंध है। वास्तव में ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है ना, वास्तव में तो दोनों अभेद हैं, पर जो भेद है वो कल्पना से किया है कि ये ब्रह्म है, ये माया है, ये ईश्वर है, ये सर्व कल्पना की हुई है ना। तो ये भेद जो है वो सत्य नहीं है, अभेद तो वास्तव है। और फिर कहते हैं वह प्रकृति निम्न प्रकार से विभाजित होती है। प्रकृति कहते हैं माया को, माया का नाम प्रकृति है, उसको प्रकृति भी कहते हैं, माया भी कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं, अलग अलग शास्त्रों वाले उसका नाम रखते हैं। तो प्रकृति भी उसी का नाम है, माया भी उसी का नाम है, वह उसका भी आगे भेद हो जाता है ना, जो शुद्ध सत्व गुण युक्त है सो माया, वो जो माया है ना उसमें तीन गुण हैं, तीन गुणों वाली जो इसको प्रकृति कहते हैं, राज, ताम और सत, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीन जो है ना, तीन इन तीन वाली है वो, उसको माया कहते हैं। तो जब उसमें सत्व गुण की प्रधानता रहती है ना, सत्व गुण ज़्यादा रहता है, तब उसका नाम माया है। तो जब उसमें मरण सत्व गुण होता है, भाव जब उसमें राज और ताम बढ़ जाते हैं ना, तो सत्व गुण शुद्ध नहीं ना रहता, मरण हो जाता है, तब उसका नाम अविद्या पड़ जाता है। है वो एक ही, जब उसमें सत्व गुण प्रधान रहता है तो उसको माया कहते हैं। जब उसमें सत्व गुण मलिन हो जाता है ना, उसमें दूसरे गुण मिल जाते हैं, अधिकता हो जाती है, तब उसको अविद्या कहते हैं। और तमोगुण की जब प्रधानता होती है तो उसको तमा प्रधान प्रकृति कहते हैं, तमा प्रधान, तमोगुण प्रधान प्रकृति कहते हैं। तो तीन प्रकार की हो जाती है एक ही वो जो गुण है तीन, उनके घटने बढ़ने से उसके अलग अलग नाम, माया, अविद्या और तम प्रधान प्रकृति। तो ईश्वर जीव किसको कहते हैं? माया में ब्रह्म का प्रतिबिंब और माया, इन दोनों सहित अधिष्ठान ब्रह्म को जगतकर्ता सर्वज्ञ ईश्वर कहते हैं। ईश्वर किसका नाम है? बताया था ना कि इनका सबका विचार करना है, तो पहले ईश्वर किसको कहते हैं? तो माया में ब्रह्म का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब समझते हैं, आभास, जो छाया पड़ती है ना, फोक्स पड़ता है, जैसे जैसे शीशे में हमारी छाया पड़ती है तो उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। तो जो माया है, माया में ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ रहा है, माया तो जड़ है ना, माया में ब्रह्म का प्रतिबिंब, आभास, उसका फोक्स पड़ रहा है, छाया पड़ रही है। तो माया में ब्रह्म का प्रतिबिंब और माया, एक तो ब्रह्म का प्रतिबिंब हुआ, एक माया हुई, दो हो गए ना। इन दोनों सहित अधिष्ठान ब्रह्म को, माया में ब्रह्म का प्रतिबिंब और माया, इन दोनों को अधिष्ठान, इन दोनों के सहित, एक तो हुआ, एक हुई माया, माया में पड़ा ब्रह्म का प्रतिबिंब, और ये दोनों किस में रहेंगे? ये भी ब्रह्म में रहेंगे ना, इनका भी तो कोई आश्रय चाहिए ना। एक माया है, जैसे शीशा है, शीशे में हमारा प्रतिबिंब पड़ा, और शीशा भी तो किसी में रह रहा है ना, किसी के आश्रित है ना वो। इसी प्रकार माया है, माया में ब्रह्म की छाया पड़ी, और माया भी किसी में रहेगी ना। ये माया में पड़ा हुआ प्रतिबिंब और माया, ये दोनों, इनको दोनों को माया जो ब्रह्म है, इनको लेकर के वो जो ब्रह्म संसार का कर्ता है ना, उसको कहते हैं ईश्वर, उसको सर्वज्ञ कहते हैं, उसको ईश्वर कहते हैं। तो ये बस समझने की बात है, कोई कठिन नहीं है। माया में ब्रह्म का आभास, छाया, इनके सहित जो अधिष्ठान ब्रह्म है उसको कहते हैं ईश्वर। अविद्या में ब्रह्म का प्रतिबिंब और अविद्या, पहले तो माया का बताया ना, और दूसरा है कि अविद्या, अविद्या का बताया था अभी कि जिसमें मलन सत्व गुण है उसको अविद्या कहते हैं। तो अविद्या में ब्रह्म का प्रतिबिंब और अविद्या, इन दोनों सहित अधिष्ठान कूटस्थ को भोक्ता अल्पज्ञ जीव कहते हैं। ये जीव और ईश्वर की परिभाषा है, बस यही समझने की बात है, तभी इनका स्वरूप अलग अलग समझ में आता है। अविद्या और अविद्या में माया का, ब्रह्म का प्रतिबिंब, इन दोनों सहित अधिष्ठान कूटस्थ, कूटस्थ कहते हैं साक्षी को जो बदलता नहीं है, कूटवत, कूट कहते हैं जैसे लोहे का एक टुकड़ा होता है ना, जैसे अहरण होती जिसके ऊपर कूटते हैं, होती है ना, इतना टुकड़ा होता लोहे का, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जैसा रहता, घना रहता है, ऐसा जो होता है उसको कूट कहते हैं।
लोहार बनाता ना, अलग अलग छंद बनाता है,
लोहार कूटता ना, जिसके ऊपर बनाता है, शस्त्र बनाता, कुछ बनाता है, एक रखा होता लोहे का टुकड़ा, उसकी तरह जो हो, भाव जो बदलता नहीं है, उसमें कोई बोल नहीं है, एक जैसा रहता है, ऐसा जो कूटस्थ है उसको कहते हैं जीव, अल्पज्ञ जीव कहते हैं। अब ये कहते हैं कि जीव और ईश्वर का अनादि भेद, ईश्वर और जीव भी अनादि कल्पित हैं दोनों, वैसे जीव ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है, केवल ये कल्पना है पहले से, ये जीव है, ये ईश्वर है, वास्तव में नहीं है लेकिन कल्पना है, ये दोनों अनादि हैं। जीव भी पहले से जीव संज्ञा, ईश्वर संज्ञा भी पहले से चली जाती है, उनमें ईश्वर की उपाधि माया एक है। उपाधि से ब्रह्म का नाम ईश्वर पड़ा है ना, जैसे घट है ना घड़ा, तो घड़े के अंदर आकाश है ना, घड़े के अंदर भी आकाश है ना, ये सब आकाश में ही तो है, जितने ये जो दिख रहा है इसका एक किस्में है आकाश में है। तो जैसे हमने घड़ा बना दिया तो घड़े के अंदर भी आकाश है ना, तो जब घड़े के अंदर आकाश उसका नाम क्या हो जाएगा, घटा आकाश, घड़े का आकाश है। आकाश तो व्यापक है परंतु वो उपाधि लगने से उसको हम कह देते हैं घटा आकाश। तो ब्रह्म का नाम ईश्वर कैसे पड़ गया, माया रूप उपाधि लग गई ना उसको, माया के अंदर जो है ना, माया के अंदर जितना आ गया, जैसे घड़े के अंदर आकाश है तो उसको घटाकाश बोलते हैं। इसी प्रकार माया में जो आभास पड़ा ना, उसका छाया पड़ी, उसका नाम हो गया ईश्वर। और आपेक्षक, वो जो उसकी उपाधि माया है ना, वो एक है, एक ही है, दो नहीं है, पूरे व्यापक है वो, और आपेक्षक व्यापक है, इसलिए ईश्वर भी एक है और व्यापक है। जब उसकी माया रूप उपाधि व्यापक है, व्यापक मतलब होता सब जगह है, माया सर्वत्र है ना, हम लोगों की अपेक्षा माया बहुत जगह है, सब जगह माया है, माया एक है, दो नहीं है, ईश्वर की उपाधि माया एक है। जब माया उसकी उपाधि एक है तो ईश्वर भी एक है। फिर कहते हैं जीव की उपाधि अविद्या, अविद्या को बताया था कि जिसमें मरण सत्वगुण है उसको अविद्या कहते हैं। तो जीव की उपाधि जो अविद्या है वह नाना है, नाना मतलब अनेक है, इस जीव की अलग, उस जीव की अलग, उस जीव की अलग अलग है ना, तो अनेक है और परिच्छिन्न है, परिच्छिन्न का अर्थ जो थोड़ी जगह है, माया व्यापक है सब जगह है, और अविद्या व्यापक नहीं है, परिच्छिन्न है, परिच्छिन्न मतलब थोड़ी जगह है, जो हमारी अविद्या है वो आप में नहीं है, जो आपकी उसमें नहीं है, तो थोड़ी होगी ना, व्यापक नहीं है, माया सब में एक है। तो ये जो जीव की उपाधि है ना, वो अविद्या, वो नाना मतलब अनेक है और परिच्छिन्न है, इसलिए जीव भी नाना है और परिच्छिन्न है। जब माया अलग अलग एक है तो ईश्वर एक है, जब अविद्या नाना है, जैसे घटे है ना घाड़, ये घड़ा, ये घड़ा, ये घड़ा, जितने घड़े हैं उतने आकाश अलग अलग हो गए ना, ये भी घटाकाश, ये भी घटाकाश, ये भी घटाकाश। इसी प्रकार जो जीव हैं, जब उनकी उपाधि अलग अलग है ना नाना, तो जीव भी अलग अलग है। ईश्वर की उपाधि माया एक है तो ईश्वर भी एक है। और ये कहते हैं जीव व ईश्वर का भेद भी अनादि कल्पित है, जीव और ईश्वर भी अनादि हैं, कल्पित हैं, और उनका भेद ये जीव है, ये ईश्वर है, ये भी अनादि है। ये बताई थी ना छह चीजें, छह अनादि थे, ये बता दिए कौन कौन है एक बार फिर ख्याल करना। ब्रह्म एक, माया दो, माया और ब्रह्म का संबंध तीन, जीव चार, ईश्वर पांच, जीव ईश्वर का भेद छह, ये छह अनादि हैं, और इसमें छह पांच जो है अंत वाले हैं, और एक जो ब्रह्म है वो अनादि भी है, अनंत भी है, अनंत का मतलब जिसका अंत नहीं होता। ये छह बता दिए, इनका स्वरूप भी बता दिया। अब कहते हैं कि शुद्ध ब्रह्म में प्रपंच का आरोप, कल्पना ना उसने कल्पना करके दिखाना ये कैसे है, बता रहे हैं। सृष्टि के पूर्व जीवों की उपाधि अविद्या, सृष्टि जब नई ना बनी थी उसके पहले जीवों की उपाधि थी ना अविद्या, अविद्या उसकी उपाधि है, जिसके अंदर रहने वाले को तो कहते हैं ना उपाधि, उसको कहते हैं जिसके अंदर कोई चीज होती है, उनके कर्मों सहित माया में लीन होकर रहती है। जब सृष्टि ने ना उत्पन्न होती उससे पहले जो जीवों की उपाधि है ना अविद्या, वो जीवों के कर्मों को लेकर के कहाँ जाती है, जैसे ये संसार चल रहा है, जब प्रलय होगी ना, प्रलय महाप्रलय जब होगी, तो हमारी जीवों की उपाधि क्या है, अविद्या, वो जो हमारे कर्म है ना जितने, वो कर्मों को लेकर के ना अपने में समेट करके कहाँ चले जाएगी, माया में, माया में चले जाएगी ना, इसलिए दोबारा उत्पन्न होगा कहाँ से होगा, हमारा जो जितने कर्म है सब कहाँ जाएंगे, अविद्या में, तो अविद्या हमारे कर्मों को लेकर के कहाँ जाएगी, माया में। वह माया सुषुप्ति में अविद्या की भांति ब्रह्म से भिन्न प्रतीत अर्थात सिद्ध नहीं होती, जैसे जब सुषुप्ति अवस्था आती है ना, सुषुप्ति एक जागृत है, दूसरा स्वप्न है, तीसरा सुषुप्ति है। सुषुप्ति किसको कहते हैं? जो गाढ़ निद्रा में जब हम जाते हैं, हम कहते हैं कि आज पता नहीं चला कहाँ पड़े, उसको कहते हैं सुषुप्ति। वहाँ कहीं विद्या नहीं, अविद्या नहीं भासती, वहाँ कुछ भी नहीं भासता ना, पता नहीं चलता कहाँ। जिस प्रकार कहते वहाँ अविद्या लीन हो जाती ना सुषुप्ति में, पता नहीं चलता, उसी प्रकार जो माया है वह ब्रह्म से भिन्न प्रतीत अर्थात सिद्ध नहीं होती, उसी में मिली जाती है ना, ब्रह्म में। जैसे सुषुप्ति में हमारी अविद्या पता नहीं कहाँ चली जाती ना, अज्ञान उसी में चला जाता, उसी प्रकार जब प्रलय होती है तो जो माया होती है ना, माया कहाँ जाती, ब्रह्म के साथ अभिन्न रहती, पता नहीं चलता, अलग उसकी प्रतीति नहीं होती। इसलिए सृष्टि से पहले सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहत एक ही अद्वितीय ब्रह्म सच्चिदानंद रूप ब्रह्म था। जब सृष्टि पैदा नहीं हुई तो उससे पहले कौन था? एक ब्रह्म था। सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, श्रुति कहती है कि हे सौम्य, ये सत ही था पहले, आद सच। फिर आद सच का मतलब है सृष्टि से पहले आदि में क्या था? सत, ब्रह्म ही था। जुगाद सच का अर्थ है जब सृष्टि उत्पन्न हुई, जुगों का जब आरंभ हुआ तो सच एक ही है। तो है भी अभी चल रही है सृष्टि, तो अभी भी सत है, उसी भी जब सृष्टि का प्रलय हो जाएगा तो सत ही रहेगा। वही बात है, वही कहते हैं कि इसमें प्रपंच पहले था लेकिन वो माया में लीन था, तो माया ब्रह्म के साथ अभेद थी, तो इसलिए एक ब्रह्म ही था, कुछ नहीं था। उस ब्रह्म को सृष्टि के आरंभ में जीवों के परिपक्व एवं फलोन्मुख हुए कर्म रूप निमित्त से जब सृष्टि आरंभ होनी थी ना, जब सृष्टि आरंभ होने लगी तो वो जो ब्रह्म था, जीवों के जो कर्म थे ना, जीवों के कर्म उसमें पड़े थे ना, सभी बीज रूप में, बीज रूप में पड़े थे ना, जीवों के कर्म बीज रूप में पड़े थे, तो जो कर्म थे जब उनका फल देने का समय हुआ ना, तो ब्रह्म के अंदर हलचल हुई। उस ब्रह्म के अंदर हलचल होती है, क्या उसका उसमें क्या संकल्प आता है? एको हम बहुत श्याम पर जाए, या उसके अंदर संकल्प भर जाता है कि मैं एक से बहुत हो जाऊँ। कर्म जो है ना, कर्म जीवों के बीज रूप में पड़े थे ना, तो जब वो फल देने को तैयार हुए तो ब्रह्म के अंदर हलचल होती है माया के द्वारा, वैसे नहीं होती, उसमें माया ही कराती है, माया से संकल्प होता है कि एको हम बहुत श्याम, मैं एक से बहुत रूप हो जाऊँ। जब ऐसा होता है तो ऐसी इच्छा जब उसके अंदर होती है तो उसी इच्छा से ब्रह्म की उपाधि माया में क्षोभ होता है। जब हम ब्रह्म के अंदर जो संकल्प हुआ तो माया के अंदर क्षोभ होता है, माया मतलब हिलने जुलने लगती है। तो भूतों की उत्पत्ति की क्रिया का प्रथम क्षण रूप प्रवृत्ति होकर क्रम से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी जे पांच महाभूत हो जाते हैं। बस इतना ही होता है। गुरु महाराज जी ने जो कहा है ना, कीता पसाओ एको कवाओ तेस्ते होए लख दरियाओ, कीता पसाओ एको कवाओ का अर्थ एक शब्द बोला, एको हम बहुत श्याम, इतना ही बोलता है तो बस इतना ही होता है उसके अंदर। बोलता मतलब समझाने की बात है, इतना ब्रह्म के अंदर संकल्प होता है, एक से बहु हो जाऊं, इतने से ही सब तेहते हो लख दरिया हो, पूरा हो जाता है वो, सृष्टि एकदम उत्पन्न हो जाती है, मतलब पांच जो भूत हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। उनका पंचीकरण नहीं हुआ था तब वे अपंचीकृत थे, ये भी एक कठिन प्रक्रिया है। पहले पाँच ही थे, कौन? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांच पहले उत्पन्न हुए। अब ये उसमें सूक्ष्म थे, ये हमारे को दिख रहे हैं, ये नहीं थे, उत्पन्न तो हुए। अब आकाश बहुत व्यापक है, पृथ्वी कितनी व्यापक है, अग्नि कितनी व्यापक है, पहले ऐसी नहीं थी, सूक्ष्म थी, पता नहीं चलता था उसका। उत्पन्न तो हुई लेकिन सूक्ष्म थी। ये जो हमारे को दिखाई दे रहा है, ये तो दिखाई दे रहा जब पाँच के पच्चीस हो गए, ये जो दिखाई दे रहा जो स्थूल है, जैसे जल है ना, जल, जल हमारे को जो दिखता है ना जल, ये सूक्ष्म नहीं है, ये स्थूल जल है, इसका जो एक अधिष्ठान जिसको कहते हैं हम जल का देवता जैसे कह देते हैं, वो जल का स्वरूप है। जैसे आपने सीरियल देखा ना, सीरियल गंगा का सीरियल देखा, तो गंगा जो ये बह रही है ना गंगा, ये पुत्र थोड़ा पैदा करती है। देखा ना सीरियल महाभारत देखा, तो उसमें गंगा ने पुत्र कैसे पैदा किए, ये थोड़ा करेगी जो बह रही है। इसका मतलब उसका एक अलग से सूक्ष्म स्वरूप भी है, अलग से रूप है उसका। तो ये जो पांच भूत है ना, पहले सूक्ष्म रूप में थे, उनका पंचीकरण नहीं हुआ था, तब वे पंचीकृत थे, उनमें समष्टि व्यष्टि रूप सूक्ष्म सृष्टि उत्पन्न हुई। जो सूक्ष्म भूत थे ना पांच, उनसे सूक्ष्म सृष्टि पैदा हुई। जैसे भूत हैं ऐसी सृष्टि पैदा हुई। फिर ईश्वर की इच्छा से जब उनका पंचीकरण हुआ, तब वे पंचीभूत पंचीकृत हुए और उनमें समष्टि व्यष्टि स्थूल सृष्टि पैदा हुई। पहले सूक्ष्म रूप में उत्पन्न हुए भूत, तो उनसे सूक्ष्म सृष्टि पैदा हुई।
भूत पांच तत्व, एक भूत प्रेत वाले नहीं,
नहीं प्रेत वाले नहीं, वो तो बता ही दिया, उनको भूत कहते हैं जो पांच हैं। ये जो सूक्ष्म मतलब छोटे रूप में थे, तो उसमें से सूक्ष्म सृष्टि पैदा हुई। तो जब स्थूल रूप में आ गए, तो ये जो दिखाई पड़ रही है ये पैदा हुई। उनमें समष्टि स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच का अभिमानी जीव की दृष्टि से ईश्वर है। दो प्रकार की सृष्टि होती है, एक व्यष्टि एक समष्टि। व्यष्टि कहते हैं अकेला अकेला जो होता है उसको व्यष्टि कहते हैं, समष्टि कहते हैं सबका समूह। दो प्रकार की सृष्टि है। तो जो दो प्रकार की सृष्टि कौन सी है, एक सूक्ष्म सृष्टि एक स्थूल सृष्टि, तो उसका कारण जो प्रपंच है, उस प्रपंच का अभिमानी जो कहता कि प्रपंच मेरा है, ऐसा जो अभिमान करने वाला जीव की दृष्टि से ईश्वर तथा व्यष्टि स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच का अभिमानी जीव है। जो समष्टि सृष्टि है ना, समष्टि सबकी, उसका अभिमान कौन करता है, ईश्वर। और जो अकेली अकेली जैसे हम हैं, तो हम केवल अपना अभिमान करते हैं ना कि मैं हूँ। जो ईश्वर है वो सबका करता है कि ये सब कुछ मैं हूँ। तो दो अभिमान करने वाले हो गए, जो व्यष्टि है अकेले अकेली जो सृष्टि है उसका अभिमान करता है जीव, और जो पूर्ण समष्टि जो सृष्टि है उसका अभिमान करने वाला है ईश्वर। उसमें ईश्वर सर्वज्ञ होने से ज्ञान दृष्टि से बाजीगर के व्यवहार में बाजीगर की भांति, जो ईश्वर है वो सर्वज्ञ है, तो वो उसका दृष्टांत देते हैं कि वो कैसा है। बाजीगर का बाजीगर समझते हैं तमाशा करने वाला, जो उसको मदारी बोल देते हैं हम, जो बाजीगर होता है ना, बाजीगर के व्यवहार की भांति और भक्ति अर्थात उपासना एवं कर्म दृष्टि से जेल में जेलर की भांति नित्य मुक्त है। जैसे बाजीगर होता है ना, जो मदारी होता है, जब वो तमाशा दिखाता है ना, तो सभी लोगों की दृष्टि को बांध देता है, और दिखाता कितना कुछ है वो, कभी कुछ दिखाता कभी कुछ दिखाता, लेकिन उसमें सत्य क्या होता है, मदारी, बाकी सब तमाशा होता है। तो कहते वो ऐसा है, जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि बाजीगर जैसे बाजी पाई नाना रूपे दिखलाई, कहते हैं ना बाजीगर ने जैसे बाजी पाई ना, बाजी मतलब तमाशा दिखाया, तो नाना प्रकार की वस्तुएं दिखा देता है। फिर क्या होता है, जब तमाशा समेट लेता है तो अकेला रह जाता है। उसी प्रकार कहते हैं वह ईश्वर कैसा है, बाजीगर की तरह है, सर्वज्ञ सबको जानता है, लेकिन उसको पता है कि सब तमाशा है, मैं अकेला हूँ। बहुत अलग सर्वज्ञ है, उसको किसी के साथ मिलता नहीं है, तमाशे में नहीं रहता, वो तमाशे से अलग रहता है। या दूसरा दृष्टांत देते हैं कि जेल में जेलर की भांति नित्य मुक्त है, जेल में जो कैदी रहते हैं वो मुक्त नहीं है, वो उसके अधीन है। जो जेलर होता है, सुपरिटेंडेंट जिसको बोलते हैं, वो क्या था, मुक्त होता, उसको वो जेल के अंदर जाता वो भी, लेकिन वो कैदी नहीं है। कैदी अपने आप कहीं जा नहीं सकते, तो जेलर जब आता है जाता है, वो मुक्त है। इसी प्रकार ईश्वर है। जीव अल्पक होने से बाजीगर में जैसे बाजीगर रचित व्यक्ति है ना, जो बाजीगर ने चीजें बनाई वो बाजीगर के अधीन है, उसी प्रकार जीव जो है वो कैसा है, बाजीगर ने जैसे चीजें बनाई होती ना, ऐसे वो उसके अधीन है, ईश्वर के अधीन है। और जेल में जैसे अपराधी बंधे हुए हैं, उसी प्रकार जीव है। ईश्वर जो है वो जेलर की तरह है, और जो हम लोग जीव हैं वो कैदी की तरह उसके अधीन है, ईश्वर के अधीन है हम लोग, ईश्वर मुक्त है। या बाजीगर अकेला अलग है, बाकी उसके सब अधीन है जो बनाया उसने, उसी प्रकार ईश्वर बाजीगर की तरह है, बाकी सारा संसार उसकी बनाई हुई वस्तुओं की तरह है। इस रीति से शुद्ध ब्रह्म में प्रपंच का आरोप हुआ। ये बताया कि कैसे उसमें से ये आया प्रपंच, ये कहा था ना बताइए, आरोप करना फिर खंडन करना, पहले बता दिया कि इस प्रकार उसमें से आया है। पहले वो अकेला ही था, अकेला शुद्ध ब्रह्म था, जब जीवों के कर्म फल देने के लिए तैयार हुए तो उसमें संकल्प आ गया कि एक से मैं बहुत हो जाऊं तो पूरी सृष्टि हो गई। अब ये कहते हैं यह प्रपंच आरोप सत्य है या मिथ्या, ये जो आपने प्रपंच दिखाया ईश्वर में ये पैदा हो गया संसार, ये सत्य है कि मिथ्या है? यदि यह सत्य होगा ना संसार तो दो हो जाएंगे, ब्रह्म भी सत्य संसार भी सत्य, तब मुक्त कहाँ होगा, तब उसका नाश नहीं हो सकता प्रपंच का। लेकिन सभी ग्रंथ सभी महापुरुष कहते हैं कि यह प्रपंच जो है हुआ नहीं है, और हम भी देखते हैं कि हमारे होते ये मर रहा है जा रहा है, सत्य नहीं है। ये कहते हैं शंका की है कि आरोप जो आपने दिखाया ये सत्य है कि मिथ्या है? ये कहते हैं यह आरोप रस्सी में सर्प, साक्षी में स्वप्न और दर्पण में नगर के प्रतिबिंब की भांति मिथ्या है। दृष्टांत दे के बताते हैं कि रस्सी में सर्प, रस्सी में रात्रि को पड़ी अंधेरे में रस्सी, तो उसमें सर्प दिखता ना हमारे को, हम भाग जाते हैं कि सर्प पड़ा है, कभी हमारा पाँव ऊपर आ जाए तो कई बार बुखार हो जाता है, बाद में जब देखेंगे प्रकाश करके भी ये तो मैं इसमें तो कुछ भी नहीं, ये प्रपंच ऐसा है प्रतीत हो रहा है पर जब ज्ञान हो जाए तब नहीं है। और दूसरा दृष्टांत देते हैं कि दर्पण में नगर, जैसे आकाश में कभी कभी जब बादल होते हैं ना साफ होते तो दिखाई पड़ता ना कि यहाँ कोई जैसे गांव बना होता है, आकाश में दिखता ना, होता थोड़ी है, उसको हरिचंद की नगरी बोलते हैं हम लोग, हरिचंद की नगरी कह देते हैं, तो वो होती नहीं है, वो दिखाई पड़ती है होती नहीं है। इस प्रकार ये प्रपंच का जो आरोप किया है ना ब्रह्म में, यह सत्य नहीं है मिथ्या है। अब ये कहते हैं कि यह आरोप होता कैसे है, ये दिखाई कैसे पड़ रहा है, तो ये कहते हैं कि यह आरोप अज्ञान से होता है, इसका और कोई कारण नहीं है, केवल अज्ञान है ना जो हमारे अंदर अज्ञान पड़ा है, अपने आप को ना जानने से यह प्रपंच दिखाई पड़ता है, वास्तव में है नहीं है। यहाँ छोड़ दें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः।